पहला विचार, सिस्टम से हथियार खरीदना सबसे सुरक्षित, सबसे सटीक और शायद सबसे महंगा, रुद्र ने धीरे से कहा। सिस्टम, आर्मामेंट्स, एक सेकंड, दो, फिर स्क्रीन पर हल्की लहर दौड़ी। लेकिन एक्सेस डिनाइड, रिक्वायरमेंट, स्पिरिट किल्स, दस। रुद्र हल्का सा हंसा, तो अभी मैं योग्य नहीं हूं। ये जवाब उसे निराश नहीं कर रहा था बल्कि दिशा दे रहा था, मतलब सिस्टम के हथियार वास्तविक हैं और बहुत शक्तिशाली भी, पर तब तक उसे कुछ और चाहिए। दूसरा विचार, ब्लैक मार्केट। अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। हर शहर में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो नक्शों पर नहीं होते, जहां पुलिस नहीं जाती, जहां सवाल नहीं पूछे जाते, जहां पैसा और कभी कभी खून ही पहचान होता है। रुद्र की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसे अचानक याद आया, रेस्टोरेंट के पास वाली सड़क, उसके पीछे पुरानी मार्केट और उसके नीचे जाते हुए संकरे सीढ़ियां, वह जगह जहां दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकानें दिखती हैं और रात में ताबीज, पुराने सिक्के, अजीब धातुएं, टूटी मूर्तियां और कभी कभी ऐसी चीजें जिनके पास खड़े होने भर से त्वचा सिहर उठे। अगर यह जमीन सच में शमशान रही है, उसने सोचा, तो शहर में ऐसे लोग जरूर होंगे जो इस दुनिया से अनजान नहीं। उसकी सांस गहरी हुई। ब्लैक मार्केट का फायदा, तुरंत हथियार। नुकसान, भरोसा नहीं, गलत चीज छू ली तो हथियार से पहले वही उसे खत्म कर सकती है। तीसरा विचार, खुद बनाना। यह विचार आते ही उसने सिर हल्का झुकाया। प्राण ऊर्जा, अगर वह इसे किसी धातु में प्रवाहित कर सके तो साधारण हथियार भी बदल सकता है, लेकिन नियंत्रण अभी कमजोर है। ओवरड्राइव फिर इस्तेमाल किया तो शायद लड़ाई से पहले ही उम्र जलने लगे। उसने तुरंत यह विकल्प किनारे रख दिया। अभी नहीं, कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर रुद्रचानक सीधा बैठ गया। एक चौथा विचार उभरा, धीमा लेकिन बेहद खतरनाक। ईरा, वह जानती है, काली पहाड़ी, अंगूठी और शायद इस दुनिया के नियम, वह शिकारी है या गाइड। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, या दोनों। रुद्र खड़ा हुआ। शरीर अब स्थिर था, दिमाग स्पष्ट, निर्णय लगभग बन चुका था। पहले उसने सोचा, ब्लैक मार्केट, तुरंत हथियार चाहिए, फिर सिस्टम के लिए शिकार बढ़ाऊंगा। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। गणनात्मक, शांत, खतरनाक, और जब अगली बार ईरा मिलेगी। उसने उंगली की अंगूठी को देखा, जो अब एकदम साधारण दिख रही थी। तो मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। वो खिड़की तक गया। बाहर शाम उतरने लगी थी, सूरज झुक रहा था, परछाइयां लंबी हो रही थीं। रुद्र ने धीरे से फुसफुसाया, एक साल बाद बारात आएगी। उसकी आंखों में शिकारी वाली चमक लौट आई, लेकिन जब आएगी। उसने मुट्ठी भींची, दूल्हा मैं नहीं बनूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया और उस सन्नाटे के भीतर अदृश्य रूप से खेल का अगला चरण शुरू हो चुका था। अंडरस्कोर, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शहर जाग रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसे लोग समझते हैं। ऊपर सड़कों पर ट्रैफिक था, हॉर्न थे, नियन लाइट्स थीं और देर रात तक खुले रहने वाले कैफे, जीवन का सामान्य शोर। पर रुद्र जब सोसाइटी के गेट से बाहर निकला, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस शहर की एक दूसरी परत भी है, एक धीमी, छिपी हुई, प्रतीक्षा करती परत। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए और उसी क्षण उसकी उंगली की अंगूठी बेहद हल्के कंपन से थरथराए, इतनी हल्की कि कोई और नोटिस न करे। रुद्र रुक गया, आंखें बंद की, सांस भीतर ली और तब उसे महसूस हुआ, हवा सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें छोटे छोटे कंपन तैर रहे थे, अदृश्य तरंगे, कुछ भारी, कुछ सड़े हुए, कुछ बेचैन। उसने धीरे से फुसफुसाया, तो अब मैं सच में महसूस कर सकता हूं। कल तक यह शहर सिर्फ कंक्रीट और रोशनी था, आज यह ऊर्जा का जंगल लग रहा था। उसने सड़क पार की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी चाल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसकी इंद्रियां हर दिशा में फैल चुकी थीं। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक पुरानी गली पर पड़ी। दिन में वो गली साधारण लगती थी, टूटी दीवारें, पुराने बोर्ड, बिजली के उलझे तार, लेकिन अभी उस गली के मुहाने पर हवा स्थिर थी, अजीब तरह से स्थिर, जैसे कोई अदृश्य सीमा हो। रुद्र के कदम खुद रुक गए। अंगूठी फिर कांपी, इस बार थोड़ा ज्यादा, चेतावनी नहीं, मानो पहचान। उसने बिना सोचे उस गली में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, शहर का शोर पीछे छूट गया, अचानक पूरी तरह। अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी, टिक टिक टिक। गली लंबी नहीं थी, पर उसे पार करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह दूरी में नहीं, परतों में उतर रहा हो। तापमान गिर गया, हवा भारी हो गई और फिर गली खत्म हुई। नीचे जाती संकरी सीढ़ियां सामने थीं, कंक्रीट घिस चुका था, किनारों पर काला धब्बा था, जैसे नमी नहीं, समय जम गया हो। सीढ़ियों के ऊपर एक टूटा बोर्ड लटका था, उस पर आधे बुझे अक्षरों में लिखा था, नाइट रिपेयर मार्केट। रुद्रहल्का मुस्कुराया, झूठ बोलने की भी मेहनत नहीं की। उसने नीचे देखा, अंधेरा था, पर पूरा नहीं, बहुत नीचे कहीं बैंगनी सी धुंधली रोशनी तैर रही थी और उसी क्षण उसकी रीढ़ में एक धीमी सिहरन दौड़ी। डर नहीं, शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जैसे शिकारी जंगल में घुसते समय महसूस करता है। उसने पहला कदम नीचे रखा, फिर दूसरा, हर कदम के साथ शहर पीछे छूटता गया और कुछ और करीब आता गया। 10 सीढ़ियां 20 30 और फिर वह नीचे पहुंच गया। रुद्र की आंखें कुछ सेकंड स्थिर रह गईं। सामने जो था वह बाजार था, पर वैसा नहीं जैसा दुनिया जानती है। यहां दुकानें थीं, लेकिन सीधी कतारों में नहीं, कुछ तिरछी, कुछ आधी अंधेरे में, कुछ ऐसे कोण पर बनी कि भीतर झांकना मुश्किल हो। ऊपर लटकते बल्ब सफेद नहीं थे, बैंगनी, नीले, कहीं कहीं हल्के हरे। रोशनी स्थिर नहीं थी, धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे पूरा बाजार सांस ले रहा हो। और तभी रुद्र ने पहली चीज महसूस की, आंखें, लोग उसे देख रहे थे। खुले तौर पर नहीं, पर छिपकर भी नहीं, जैसे नए जानवर को जंगल में देखा जाता है। एक दुकान पर काले धागों में बंधे ताबीज लटक रहे थे, उनमें से एक अचानक हिला, जबकि हवा नहीं थी। दूसरी जगह एक पुरानी तलवार कांच के भीतर रखी थी, उसकी धार पर धुंध जमा थी, लेकिन वह धुंध बाहर नहीं, अंदर की तरफ बह रही थी। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल सामान्य था, पर उसका दिमाग बेहद सतर्क। यहां हर चीज कहानी है, उसने सोचा, और शायद हर कहानी खून पर खत्म हुई है। अचानक एक बहुत बूढ़ी आवाज आई, पहली बार आए हो? रुद्र ने सिर घुमाया। एक दुकान, लकड़ी की, और उसके पीछे बैठा एक आदमी, इतना बूढ़ा कि उम्र पहचानना मुश्किल। आंखें धंसी हुई, लेकिन चमकदार, खतरनाक तरीके से जागृत। हां, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हारी चाल बता रही है, तुम रास्ता ढूंढने नहीं आए। उसकी नजर नीचे गई, सीधे अंगूठी पर, मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। रुद्र कुछ बोला नहीं, बस आगे बढ़ गया, वो यहां कुछ खोजने आया था। जैसे जैसे वो बाजार में भीतर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि ऊर्जा बदल रही है। कुछ दुकानों के पास से गुजरते हुए त्वचा ठंडी पड़ जाती, कुछ के पास दिल की धड़कन हल्की तेज हो जाती। एक जगह उसने कांच के जार में बंद काले राख जैसी चीज देखी। वह राख खुद ब खुद हिल रही थी, मानो भीतर सांस हो। रुद्र रुका नहीं, क्योंकि उसी क्षण उसे कुछ महसूस हुआ, एक दिशा से बहुत सूक्ष्म खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य धागा उसकी छाती से बंध गया हो। उसने सिर उठाया, बाजार के बाकी हिस्से धुंधले लगने लगे, और उस धुंध के पार वह था, बैंगनी, गहरा, स्थिर। एक दुकान नहीं, एक कोना, जैसे रोशनी वहां जमा होकर ठहर गई हो। अंगूठी गर्म होने लगी, धीरे धीरे पहचान, रुद्र के कदम खुद मुड़ गए। अब वो सीधे उसी ओर जा रहा था। पास पहुंचते ही हवा बदल गई। यहां ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब स्थिरता, जैसे समय ने गति कम कर दी हो। और फिर उसने उसे देखा, पहले आभा, बैंगनी, धुएं जैसी, अंडस्को, वह आभा हवा में तैर रही थी, लेकिन ऊपर उठने की बजाय नीचे बह रही थी, मानो गुरुत्वाकर्षण ने अपना नियम बदल दिया हो। ठंडी, भारी और अस्वाभाविक, फिर वह दिखाई दी, एक आकृति, एक स्त्री या शायद एक गुड़िया, लगभग 4 फीट ऊंची, न पूरी तरह लकड़ी, न धातु, कुछ ऐसा जो दोनों के बीच कहीं ठहरा हुआ हो, अपरिभाषित, अस्थिर। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी जैसी सफेद थी, काले लंबे बाल उसके कंधों पर सीधे गिर रहे थे, निर्जीव पर बिल्कुल उलझे बिना, आंखें बंद, चेहरा इतना सुंदर कि दिमाग कुछ पल के लिए उसे वस्तु मानने से इनकार कर दे। उसकी कमर पर चमड़े का गाटर बेल्ट बंधा था, और उससे जुड़ी थी एक छोटी लेकिन भयावह रूप से संतुलित साइड ब्लेड। पर हल्की बैंगनी रेखाएं दौड़ रही थीं, जैसे नसों में कोई ऊर्जा बह रही हो, जैसे वह धातु नहीं, जीवित हो। रुद्र थिथक गया। अचानक उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई, और उसी शांति के नीचे छिपा था एक खतरनाक एहसास, ये सिर्फ हथियार नहीं है। उसकी अंगूठी गर्म होने लगी, पर इस बार वह चेतावनी नहीं दे रही थी, मानो स्वीकार कर रही हो। तभी गुड़िया की उंगली हिली, इतनी हल्की कि अगर कोई पलक झपकता तो शायद देख ही न पाता। रुद्र की सांस रुक गई, बाजार का शोर जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। समय धीमा पड़ गया, और उसके मन में सिर्फ एक विचार उठा, मैं इसे खरीदने नहीं आया। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी, यह मुझे बुला रही थी। पीछे अंधेरे से एक आवाज आए, उसे हर कोई देख नहीं पाता। रुद्र मुड़ा, और पहली बार उस दुकान के मालिक पर उसकी नजर गई। अगर तुम उसे देख पा रहे हो, आवाज धीमी हुई, तो शायद उसने तुम्हें चुन लिया है। मेज के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, पहली नजर में वह साधारण लग सकती थी, पर सामान्य शब्द उससे कोसों दूर था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से साफ थी, लगभग चमकती हुई, सफेद बाल कंधों पर गिर रहे थे, और उस अंधेरे बाजार में सबसे गहरा, सबसे जीवित रंग उसी के आसपास था, बैंगनी आभा। वह उससे निकल नहीं रही थी, वह उसे घेरे हुए धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे स्थिर लौ। मेज पर कई वस्तुएं रखी थीं, कुछ चाकू, एक टूटा हुआ मास्क, काले धागों के गुच्छे, और फिर रुद्र की नजर वापस उस कठपुतली पर गई। वो वहां थी, करीब 2.5 फीट लंबी एक कठपुतली, अद्भुत रूप से सुंदर, चेहरा इतना बारीक तराशा हुआ कि पहली नजर में वो सोती हुई लड़की लगे। उसके हाथ में भी एक छोटी पर खतरनाक साइज थी, ब्लेड हल्का मुड़ा हुआ, धातु जैसा पर धातु नहीं, कुछ जीवित। सबसे घनी बैंगनी आभा उसी से फूट रही थी। अब रुद्र पूरी तरह स्थिर था, उसके कानों में बाकी दुनिया गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक आवाज बची थी, धक 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 उसका अपना दिल। तभी कठपुतली की उंगलियां फिर हिली, इस बार भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसी क्षण उसकी अंगूठी जल उठी, पहले से ज्यादा तीव्र, जैसे पहचान रही हो या चेतावनी दे रही हो। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखें असंभव रूप से गहरी थीं, जैसे उनमें झांकने पर कोई अंत न मिले। वो सीधे रुद्र को देखती रही, फिर मुस्कुराई, अच्छी पसंद है। आवाज मुलायम थी, पर उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी, ज्यादातर लोग इसे देखते ही नजर हटा लेते हैं। कुछ पल बाद उसने पूछा, क्या तुम भी इसे महसूस कर सकते हो? रुद्र ने जवाब नहीं दिया, उसकी नजर अब भी कठपुतली पर जमी थी। और तभी उसके दिमाग के भीतर एक आवाज फिसली, बहुत धीमी, लगभग हवा जैसी, देर कर दी, उसकी पुतलियां से कुड़ गईं। उसने तुरंत चारों ओर देखा, कोई नहीं बोला था। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट, मैं इंतजार कर रही थी। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, पहचान से। ये बुलावा नया नहीं था, ये पुराना था, बेहद पुराना, जैसे कोई उसे बहुत पहले से जानता हो। मेज के पीछे बैठी औरत आगे झुकी, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। सावधान रहना, उसने फुसफुसाकर कहा, ये खिलौना नहीं है। उसने उंगली से कठपुतली के सिर को हल्के से छुआ, ये चुनती है। सन्नाटा और गहरा हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, बैंगनी आभा धीमे धीमे घूमती रही। आखिरकार रुद्र ने पूछा, कीमत? औरत की आंखों में चमक आई, पर जवाब देने से पहले वह हल्का सा हंसी, तुम्हें सच में लगता है ऐसी चीजें पैसों में मिलती हैं? उसी क्षण कठपुतली का सिर 1 मिलीमीटर उसकी ओर मुड़ा, और साइड का ब्लेड बिना किसी स्पर्श के धीरे से कांप उठा, अंगूठी तपने लगी। तब रुद्र समझ गया, वो अब सिर्फ एक बाजार में खड़ा नहीं था, वो एक चयन के सामने खड़ा था। अंडरस्कोर बैंगनी आभा अब पहले से अधिक घनी हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में महीन कण तैर रहे हों, और हर कण रुद्र की त्वचा से टकराकर कुछ फुसफुसा रहा हो। वो अब भी मेज के सामने खड़ा था, आंखें कठपुतली पर, दिल स्थिर, लेकिन भीतर कुछ जाग रहा था। मेज के पीछे बैठी लड़की ने धीरे से अपनी उंगलियां लकड़ी की सतह पर थपथपाईं, टक टक टक, ज्यादातर लोग, उसने शांत स्वर में कहा, यहां तक पहुंचते ही लौट जाते हैं। रुद्र चुप रहा, कुछ लोग कीमत सुनकर भागते हैं, वो थोड़ा और झुकी, और कुछ, उसकी मुस्कान गहरी हुई, कीमत चुकाने के बाद भी बच नहीं पाते। सन्नाटा, दूर कहीं धातु गिरने की आवाज आई, और तुरंत ही जैसे किसी ने उस ध्वनि को निगल लिया। ये गली सचमुच आवाजों को मार देती थी। रुद्र ने आखिर पूछा, ये है क्या? लड़की ने कठपुतली की ओर देखा, उसकी नजरों में एक अजीब सा सम्मान था। नाम कई हैं इसके, उसने कहा, कुछ इसे रिपर डॉल कहते हैं, कुछ साइलेंट हार्वेस्टर। वह रुकी, फिर बहुत धीरे बोली, लेकिन इसका असली नाम कोई नहीं लेता। रुद्र की भौं हल्की सिकुड़ी, क्यों? लड़की की आंखों में पहली बार हल्की ठंडक चमकी, क्योंकि नाम लेना ध्यान खींचता है। उसी क्षण कठपुतली की साइड ने बेहद हल्का कंपन किया, जैसे सहमति दे रही हो। अंगूठी अचानक गर्म हुई, तेज नहीं लेकिन स्पष्ट। रुद्र ने बिना नीचे देखे समझ लिया, डेंजर नहीं, अलर्ट, दोनों अलग चीजें थीं, ये बनी नहीं थी। लड़की ने कहना जारी रखा, इसे बांधा गया था, हवा थोड़ी और ठंडी हो गई, बहुत समय पहले एक अस्तित्व था जो मरना नहीं चाहता था और जिसे मारा नहीं जा सकता था। रुद्र की आंखें स्थिर रहीं, तो उन्होंने उसे तोड़ा, लड़की बोली, शरीर अलग, चेतना अलग, इच्छा अलग। उसने कठपुतली के सीने पर उंगली रखी, और ये वह हिस्सा है जो अब भी काटना चाहता है। कुछ सेकंड तक रुद्र ने कुछ नहीं कहा, फिर सेमी सेंटिएंट उसने शांत स्वर में पूछा। लड़की मुस्कुराई, तुम शब्द जानते हो, अच्छा है। वो फुसफुसाई, ये सोती रहती है जब तक जरूरत ना हो, लेकिन खतरा पास आए तो ये जागती है, और जब जागती है। लड़की ने सीधे उसकी आंखों में देखा, तो ये सिर्फ दुश्मनों को नहीं काटती। सन्नाटा, संदेश साफ था, कंट्रोल एक भ्रम है। तभी रुद्र के दिमाग में फिर वही आवाज उतरी, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब, स्पर्श करो। उसकी उंगलियां अनायास हिल गईं, अंगूठी तप उठी, अब चेतावनी थी, लेकिन रुद्र पीछे नहीं हटा। छू सकता हूं? उसने पूछा। लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वो उसे पढ़ रही थी, जैसे किसी किताब के पन्ने पलट रही हो। फिर बोली, अगर इसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। वह हल्का सा सिर टेढ़ा करके मुस्कुराई, तो तुम छू भी नहीं पाओगे। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही उसकी उंगलियां कठपुतली के पास पहुंची। बैंगनी आभा सिमटने लगी, घूमकर उसके हाथ के आसपास जमा होने लगी। ठंडी लेकिन जलती हुई, एक अजीब विरोधाभास, उसकी त्वचा पर महीन झनझनाहट दौड़ी और फिर उसने कठपुतली की साइड को छू लिया। दुनिया टूट गई, आवाजें गायब, रोशनी गायब, गली, बाजार, लड़की, सब अंधेरे में डूब गया। उसने खुद को एक मैदान में खड़ा पाया। आसमान बैंगनी था, जमीन काली, हवा में राख तैर रही थी और सामने लाशें, सैकड़ों नहीं हजारों, कटी हुई, साफ, एक ही वार। रुद्र की सांस भारी हुई लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। तभी उसने उसे देखा, एक आकृति, दूर खड़ी, पतली लंबी, हाथ में विशाल साइड, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें जलती हुई। उस अस्तित्व ने धीरे धीरे सिर घुमाया सीधे रुद्र की ओर और उसी क्षण उसके दिमाग में आवाज गूंजी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट। धारक, हवा कांपी, कमजोर मत होना। अचानक वह आकृति उसके सामने थी, इतनी तेजी से आई कि समय प्रतिक्रिया ही न कर सका। साइड ऊपर उठा, एक पल को रुद्र को लगा वार होगा, लेकिन ब्लेड उसके गले से एक इंच दूर रुक गया। आंखें उसे भेद रही थीं, जांच रही थीं, तौल रही थीं। फिर एक शब्द, योग्य, दुनिया वापस जुड़ गई। रुद्र हौंदते हुए नहीं लौटा, वो उसी तरह खड़ा था, स्थिर, लेकिन उसकी पुतलियां फैल चुकी थीं, अंगूठी आग बन चुकी थी। मेज के पीछे बैठी लड़की उसे ध्यान से देख रही थी, पहली बार उसकी मुस्कान गायब थी। दिलचस्प, उसने धीरे कहा। बहुत दिलचस्प, क्या? रुद्र की आवाज सामान्य थी। बूढ़ी औरत झुकी, फुसफुसाई, पिछले तीन खरीदार छूते ही मर गए थे। सन्नाटा, लेकिन रुद्र के भीतर अजीब शांति थी, जैसे कुछ अलाइन हो गया हो। अब कीमत, बूढ़ी औरत ने कहा। पैसा नहीं, पैसा तो होगा ही, वो बोली, लेकिन असली कीमत कुछ और है। उसने तीन उंगलियां उठाई, पहली, जब ये जागे तुम पीछे नहीं हटोगे, दूसरी, तुम इसे किसी और को देने की कोशिश नहीं करोगे, उसकी आंखें गहरी हुईं, तीसरी, हवा ठंडी हो गई, अगर ये तुम्हारी जान मांगे तो तुम मना नहीं करोगे। कुछ सेकंड, फिर रुद्र ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? लड़की मुस्कुराई, तो ये खुद ले लेगी? सन्नाटा लंबा खींच गया, फिर रुद्र ने कहा, मंजूर है, कोई हिचक नहीं, कोई नाटक नहीं, बस तथ्य। उसी क्षण कठपुतली की आंखों में एक बेहद हल्की चमक आई, जैसे बंद खिड़की के पीछे किसी ने दीपक जलाया हो। बूढ़ी औरत ने धीरे से उसे उठाकर रुद्र की ओर बढ़ाया, तो फिर उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। जैसे ही कठपुतली उसकी बाहों में आए, अंगूठी अचानक शांत हो गई पूरी तरह। पहली बार वह साधारण धातु जैसी महसूस हुई और रुद्र समझ गया, ये चेतावनी नहीं दे रही, ये स्वीकार कर रही है। लेकिन ठीक उसी पल कठपुतली के लकड़ी जैसे होंठ एक बाल बराबर हिले और उसके दिमाग में एक बेहद मुलायम आवाज आई, आखिर मिल गए। रुद्र की सांस धीमी हुई, ये हथियार नहीं था, ये प्रतीक्षा थी, लंबी, प्राचीन और अब समाप्त। लड़की पीछे झुकी, सलाह दूं? उसने कहा। रुद्र ने नजर उठाई, इसे कभी पूरी तरह सोया हुआ मत समझना। वह हल्का सा हंसी, और इसे नाम मत देना। क्यों? उसकी आंखों में अंधेरा चमका, जिस चीज को नाम दिया जाता है वह जवाब देना शुरू कर देती है। रुद्र मुड़ा, गली से बाहर कदम रखा, लेकिन अब उसे साफ महसूस हुआ, वह अकेला नहीं चल रहा था। उसकी बाहों में थमा कठपुतली का बक्सा बिल्कुल निश्चल पड़ा था, फिर भी हर कुछ सेकंड में उसे लगता जैसे साइद का ब्लेड सांस ले रहा हो। और बहुत दूर ब्लैक मार्केट के शोर से परे कहीं शादी की बेहद हल्की धुन फिर बजने लगी, धक धक, ताशा, 412 दिन, बारात आ रही थी। लेकिन अब रुद्र भी तैयार होना शुरू कर चुका था।